सरस्वतीं व्यास ततो जया मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैर्षके हरे कृष्ण। यहाँ आए हुए समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राधा गिरधारी जी, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी, श्री गौर निताई की ओर से सबको शुभकामनाएं हैं। सबके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे और आप सबकी हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनी रहे, ये प्रार्थना है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 4 के ऊपर चर्चा करेंगे। वो और तो श्लोक लिखा हुआ है, आप लोग हमारे पीछे पीछे दोहराएंगे। तो आप लोग हमारे पीछे श्लोक दोहराने का कृपा कीजिएगा। निवृता तस्य उपगीयमाना भव औषधात् पुत्र मनः अभिरामात् काः उत्तमः श्लोका गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना असुघ्ना निवृत्त तस्यैरुपगीयमानाद् निवृत्त तस्यैरुपगीयमानाद् भवौ सदा छोत्र मनोभिरामा भवौ सदा छोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विनपसुघ्नात् पुमान् विरज्येत विनपसुघ्नात् निवृत्त तस्यैरुपगीयमानाद् भवौ सदा छोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना सुघ्नात् बोलिए बोलिए
रूपगीयमाना
भवौ सदा तत्र मनोऽभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवाद ओमां विरजेत विना पशुना कोई माता जी से बोलेंगे निवृत्त तस्ते रूप गेयमाना भवौ सह तत्र मनोऽभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान् विरजेत विना पशुना निवृत मुक्त तत्सैर काम या भौतिक कार्यों से उपगीयमानार वर्णित या गाए जाने वाला भवौ सधात भौतिक रोग की सही औषधि से श्रोत्र कान से सुनने की विधि मन मन के लिए विचार का विषय अभिरामात का ऐसे महिमा वर्णन की सुहावनी ध्वनि से का कौन उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवादात ऐसे कार्यों का वर्णन करने से पुमान मनुष्य विरज्येता अपने को विलग रख सकता है बिना रहित पशुघ्नान कसाई अथवा अपने आप का ही वध करने वाले से अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की अनुवाद आप लोग ध्यान से सुनिएगा बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत की मिथ्या क्षणिक वर्णन से रुचि नहीं रखते हैं। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव भगवान की महिमा का सुनना कसाई जिसको पशुघाती कहते हैं या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त कौन नहीं चाहेगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं भारत में सामान्य लोगों के बीच में यह आम प्रथा है कि बारंबार जन्म मरण के रोग से छुटकारा पाने के लिए वे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत से कृष्ण के विषय में सुनते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है किंतु यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पर बोलेगा अब भी हजार लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं आप सभी की तरह। और यह श्लोक इंगित करता है कि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुका हो। निवृत तस्थ इस जगत में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र स्थिति तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है। बिल्कुल सच भैया। और हर प्राणी इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को चाहे वह भगवद गीता के रूप में हो, चाहे श्रीमद् भागवत के रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यदि हम कृष्ण यदि हम मुक्त पुरुष के मुख से भगवान की महिमा के विषय में सुने तो इसे भवबंधन से अवश्य छूट सकते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के पेशवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति होती है, कोई सता नहीं मिल सकती है। किंतु कृष्ण कथा अति सरल है। भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण परमेश्वर है, वह स्वयं बोलते हैं, मतः परतरम न अन्यत्र किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भगवद गीता के सातवें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में भगवान कहते हैं, केवल इतना ही जान लेने से कि कृष्ण परमेश्वर है मुक्त हुआ जा सकता है। किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वह ऐसे धूर्त व्यक्तियों से भागवत गीता श्रीमद् भागवत सुनना पसंद करते हैं जो भगवत गीता को या भारत को यथरूप में प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़न मोड़न करके बड़े बड़े विद्वान राजनीतिज्ञ दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन करते हैं, और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वह किसी भक्त से भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते, और वह भक्त जो भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ही भागवत का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत परो दिय भागवत स्थाने। और जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान सिद्धात्मा न हो, तब तक नवदीक्षित को चाहिए कि वह उसे भगवान के विषय में सुनाने के लिए न कहे, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण में निम्नलिखित उदाहरण देते हुए ऐसा कहा है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम उत्तम हरि कथामृतम श्रवणम नैवम कर्तव्यम सर्पो उचिष्ट यथापयः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरस्विषे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीताम्बराद अरुणबिम्ब फलाधरो सदम्। पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानु। ध्येयं सदा परिभवघ्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरंसि न्युतं शरण्यम् वृत्यारतिहन प्रणतपाल भवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् आराध्य भगवान् व्रजयेश तनयेश तदधाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासुना व्रजवधू वर्गेण जाह कल्पितम् श्रीमद्भागवतम् प्रमाण अमलम् प्रेमापुमारथो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुरुमदमिदम् तत्रादराहना परः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। कृपया सभी लोग शांति बना करके रखें। बहुत आवाज आ रही है, शोर शराबा। भागवत जब हम श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा जब हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए यह श्रवण और वैसे सत्संग सौभाग्य से प्राप्त होता है। पहले बता दिया गया है, खैर आप तो वैष्णव वैष्णविया है, सब जानते हैं ये जो मौका यहाँ पर प्राप्त हुआ है ये बार बार नहीं मिलता, ये बार बार सुविधा नहीं प्राप्त होता और बार बार ऐसे चांस नहीं मिलेगा महाराज। कल रात्रि में हम लोग भाईंदर में चर्चा कर रहे थे, कभी कभार व्यक्ति घर से निकलता है मंदिर आने के लिए और निकल पड़ा मंदिर के लिए कि गिरधारी के दर्शन करेंगे, जगन्नाथ के दर्शन करेंगे, परंतु जगन्नाथ के दर्शन के लिए नहीं आ पाता अगर गोविंद की इच्छा नहीं है तो। भैया घर से निकला गोविंद के दर्शन करने के लिए, गिरधारी के दर्शन करने के लिए, परंतु मार्ग में उसकी मन परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्या रोज रोज गिरधारी के मंदिर में रखा है, क्या वो हरे कृष्ण हरे रामा करने से मिलता है, क्या वो टकले बाबाओं के साथ मिलकर के हरे रामा करने से मिलेगा। तो चलो भैया एक पिक्चर देख लेते हैं, संडे है, चलो एक थोड़ा सा गार्डन में घूम करके आ जाते हैं, इस प्रकार का भावना रखता और कहीं और चला जाता है। निकला था कहीं के लिए और उसकी मार्ग बदल जाती है। तो यहाँ जो आया है ये बड़े सौभाग्य से आया है महाराज, ये गिरधारी की कृपा से आया है, ठाकुर की कृपा से आया है, संतों की कृपा से आया है, इसीलिए इसका अवहेलना न करते हुए जितना समय हम यहाँ पर बैठेंगे सत्संग करेंगे, ज्यादा समय नहीं चाटेंगे, पहले से कह दिए जो नियम है उसी अनुसार कथा विराम हो जाएगी। खैर हम तो अयोग्य प्राणी हैं, हम क्या कहेंगे आपको, क्या सुनाएंगे, आप सभी को सब कुछ पता है, जो पता है उसी बातों को हम केवल दोहराएंगे थोड़ी सी, परंतु ये निवेदन है कथा में आनंद तभी आएगा महाराज, बोलने वाले को भी रुचि तब आएगी जब मैया सब कान खड़ी करके सुनेंगे। जैसे जब दुनिया की बातें होती है तो कान फाड़ फाड़ करके सुनती है, जब दुनिया के चर्चा होता है तो वह कान लगा करके सुनती है, सुनता है ना कि एक भी शब्द न चला जाए, एज इट इज यथारूप प्रस्तुत करता है। तो सही वक्ता सही श्रोता यही है जो उसका यही परिचय है, तो यहाँ से सुन करके इसी क्लास को ऐसे बता दे वो सही में श्रोता है। तो इसीलिए कान खड़ी करके सुनिए, जैसे दुनिया के निंदाओं को निंदक करने, निंदा करने वाला व्यक्ति जिस तरह निंदक वाले बातों को कान खड़ा करके सुनता है, ऐसे हम सब वैष्णव वैष्णवियों को मिल करके कृष्ण कथाओं को बड़े लगन के साथ सुनना चाहिए। संत तुकाराम जी के जीवन चरित्र से कथा श्रवण की महिमा प्राप्त होती है। और वो एक बड़े सुंदर बड़े महात्मा हुए हैं जिसने मुकुंद माला सूत्र लिखे हुए हैं, कुरुशेखर अलवार, उनके जीवन से भी कथा श्रवण की महिमा प्राप्ति होती है। महाराज जी ऐसे कथा श्रवण करते थे, जब उनके समक्ष भागवत चर्चा होता था, रामायण की चर्चा होती थी, तो उस समय महाराज को भाव विभोर हो जाते थे। क्यों भाव विभोर होते थे? क्योंकि जब वो कथा श्रवण करते थे, आप और हमारे जैसे वक्ता श्रोता में से नहीं थे, एक नंबर के श्रोता थे, एक नंबर के वक्ता भी कहने वाला था। इसीलिए कथा जब श्रवण करते थे, उन्हें लगता था कि मैं रामायण की एक पार्षद हूँ, मैं रामलीलाओं को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, क्योंकि सुनने वाला लगन के साथ सुन रहा था। सुनने वाला जब लगन के साथ सुनेंगे, ये बोलने वाला अधम प्राणी कुछ लगन के साथ बोल भी सकता है, तो वह कुरुशेखर महाराज को जब पता चलता था, ऐसा पता चला प्रसंग के अनुसार, भगवान श्री राम की पत्नी चोरी चली गई, रावण ने किडनैप कर ली, तो उस समय तुरंत राजा कुरुशेखर अलवार कथा के बीच में उठ गए, हजार लोग बैठे हुए थे, बीच में से उठे और सैनिक सैनिक कह करके चिल्लाने लगे, मंत्री वर तैयार हो जाओ सैनिकों को लेकर के चिल्लाने लगे, और चिल्लाते हुए कहे कि आओ जल्दी राघवेंद्र विपद में पड़े हुए हैं, संकट में पड़े हुए हैं मेरे गिरधारी लाल, तो उनकी मदद के लिए चलना है। तो तुरंत यहीं से चित्कार करते हुए वो कहते, कथा श्रवण करते करते कितनी लगन से कथा सुन रहे थे, आपसे विचार करिए, चिल्लाते हुए कहने लगे, हे राघवेंद्र चिंता कीजिए, भले उस अयोध्या नगरी से उस भरत के चतुरांगी सेना आपके सहयोग में नहीं है, परंतु मैं कुरुशेखर अलवार तुम्हारे साथ हूँ, मेरी चतुरांगी सेना तुम्हारे साथ में है, मेरी नारायण सेना तुम्हारे साथ में, मैं अभी आया। और सैनिकों को आदेश देकर के महाराज चल पड़े, दौड़े इतने तीव्र गति से, समुद्र में कूदने ही वाले थे, महाराज प्राण का भी परवाह नहीं था, क्योंकि गोविंद से इतनी निहाल लग गई। तो कथा सुनने की महिमा ये है, इन सब संतों से सीखना चाहिए, इन परम महात्माओं से सीखना चाहिए, वैसे कथा सुनना चाहिए। महाराज कथा ऐसे नहीं सुनना चाहिए, एक बार बाबा जी बैठ करके कथा कह रहे थे, बड़े सुंदर कथा कह रहे थे बाबा, और सामने भी मैया बैठी हुई थी। हर एक बार बाबा जब कथा प्रारंभ करते थे, मैया के आंखों से नयनम गलद अस्त्र धारया, आंखों से अजस्त्र आंसू की धारा प्रवाहित होने लगती थी, और मैया से बाबा बड़े प्रसन्न थे। बाबा सोचने लगे कि ये मैया बड़ी भावी बोलो कर कथा सुनती है, भैया पता नहीं इसको भागवत में इतनी रुचि प्राप्ति हो गई। तो अंतिम दिन मैया को नजदीक बुलाए बाबा, मैया जरा आइयो मेरे पास, पास में बुलाए, पूछे कि मैया बताओ तुम्हें कथा में क्या बात अच्छी लगी, तुम्हें क्या भागवत में प्रेम हो गई, तुम्हें क्या भगवान में प्रेम हो गया, तुम्हें क्या सच में भक्तों से प्रेम हो गई, तुम्हें क्या गोविंद से तुम्हारी निहर लग गई, तुम्हें क्या हो गया जिस कारण जब मैं जभी भी कथा कहता हूँ तुम्हारे आंखों से आंसू की धारा रुकती नहीं है, तो क्या बात है जरा सुनाई हो तो। और मैया हंसने लगी, 7 दिन तो रोने लगी, बड़ा जब पूछे तो हंसने लगी, क्या बात है मैया क्यों रोती थी कथा में? मैया कहने लगी कि बाबा जी तुम्हारे कथा में मुझे कोई रुचि नहीं था। वो इतने तो बाबा तो हल्के पड़ गए, अरे तो पहले टोक दी, कथा में कोई आनंद नहीं था तो फिर किस बात की तुम रो रही थी, क्या दुखी थी? बोले कि जी महाराज किस बात की दुख तुम्हें सताती है? बोले कि बात ऐसी है, जब बाबा तुम कथा करते हो ना तो तुम्हारे जो दाढ़ी थे वो दाढ़ी वाले बाबा थे, हमारे जैसे टकले बाबा नहीं थे, डड्डी वाले बाबा थे। बोले कि बाबा जब तुम कथा कहते हो तो तुम्हारे थोपड़े पे जो दाढ़ी है वो हिलता था महाराज, जब ये दाढ़ी हिलने लगती थी तो फिर हम देखते थे तो हमें याद आती थी, क्योंकि आज से 7 दिन पहले हमारा एक बकरा था, वो बकरा का भी यहाँ थोड़ी सी दाढ़ी थी, वो बकरा मर गया, उसी की विरह में तुम्हें देख कर के बाबा मेरे बकरा का स्मृति होता था। वाह, ऐसे श्रोता अगर हो जाए तो वक्ता का तो उद्धार हो जाएगा महाराज। अरे महाराज ऐसे श्रोता श्रोती अगर आ गई, वक्ता को तो गोविंद हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, तो हमें ऐसे श्रोता नहीं बनना चाहिए, हमें ऐसा श्रोता बनना चाहिए अगर घर से समय निकाल करके यहाँ पर आए हुए हैं प्रभु जी लोक मैया लोक, तो कान खोल करके सुनिए। ये समय बार बार नहीं मिलता, क्या पता अगले संडे तक अगले रविवार तक हमारे हृदय में प्राण रहेगा नहीं रहेगा। अरे महाराज अभी एक बार सांसे थोड़े वापिस लाएंगे इसकी भरोसा नहीं है। इसलिए जितना समय सौभाग्य प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का, उतने समय आनंद ले लो हरि भजन करके, उतने समय गोविंद का नाम उच्चारण कर लो, उतने समय सत्संग में आपको सम्मिलित कर दो, उतने समय गोविंद के सेवा में लगा दो, उतने समय अपने आप को गोविंद के पास निछावर कर दो, अगले बार ये चांस मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग मनुष्य तन बाबा, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। और ये ऐसे सत्संग कई बार कहा गया है ये तो गोविंद के कृपा से मिला हुआ है, इसलिए अवहेलना मत कीजिए, कथा को बड़ा लगन से सुनिए महाराज, तभी फायदा होगा। हमारी यहाँ घंटों भर पैं पैं भें भें करने से कुछ लाभ नहीं है। अगर आप कुछ यहाँ से सीख कर नहीं जाएंगे, आप कुछ सीखेंगे तो हमें भी कुछ शिक्षा मिलेगी। आपकी कल्याण हमारी कल्याण, हमारी कल्याण आपकी कल्याण। महाराज हम कोई बड़े नहीं है, ये मत सोचिए कि आसन पर बैठ गए तो बहुत बड़े हो गए और आप जमीन पर बैठ गए तो छोटे हो गए। नहीं महाराज, चौकी पर बैठने वाला तो चौकीदार होता है, जमीन पर बैठने वाला तो जमींदार होता है, सेवक है हम आपके। परंतु फिर भी एक लगन होता है, वक्ता और श्रोता के बीच में कनेक्शन होती है। अगर श्रोताओं के मुखड़े में अगर बार बार घड़ी देखने लगे कब तक चाहेगा समय, तब तो फिर मजा खत्म हो जाती महाराज। श्रोताओं की ओर से आवाज आनी चाहिए, प्रभु जी और पीटो और थोड़े देर खींचो महाराज, ऐसी होनी चाहिए कथा में, ऐसी लगन होनी चाहिए। महाराज परीक्षित जब भागवत सुन रहे थे, तीसरा दिन दूसरा दिन बीच बीच में, वो तो खैर राजा ही थे महाराज, एक से रियल जूस आपेल अप्पी के जूस ऑरेंज जूस पीते थे महाराज राज दरबार में बैठ करके। खैर तीन दिनों से कथा चल रही थी, अब जल भी नहीं पिए थे, जूस की बात भी छोड़ दो। बीच में श्री सुखदेव गोस्वामी उनसे कहते, राजन थोड़ी सी जूस पी लीजिए, थोड़ी सी पानी पी लीजिए, हम वेट करते हैं, बाद में कथा शुरू करेंगे। परंतु महाराज परीक्षित कहने लगे, हे ब्राह्मण हे भगवान, आप हमें अमृत पिला रहे हो, इस दुनिया के 80 रुपया वाला रियल जिस डब्बे की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें तो आप अमृत पिला रहे हो, इसे हम तृप्त है। क्योंकि वो वास्तव में उनको भूख नहीं था, भूख नहीं थी महाराज परीक्षित, क्यों नहीं था जानते हैं? आज कृष्ण कथा में भी ऐसे ही आनंद है महाराज। इसके पीछे जिसकी मन लग गई, जिसका नेह गोविंद से लग गया, जिसकी चित्त वृत्ति एक बार गिरधारी में छा गया, जिसने एक बार किशोरी जी को देख लिया, जिसने एक बार गौरंग महाप्रभु को सच्चे मन से देख लिया, अब तो हम देखते हैं, परंतु ये देखना दर्शन नहीं है, सच्चे दिल से दर्शन जिसको कहते। दर्शन की विधि होती है चरण से लेकर घुटने और नाभि, फिर वक्षस्थल, फिर गर्दन, फिर पूरे मंडल सर्वांग सौंदर्यमय, बराहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के दिव्य सौंदर्य का अनुभव करे। महाराज कभी कभार व्यक्ति दर्शन करता है, ये पता नहीं गिरधारी आज कैसे ड्रेस पहने हैं, तो कैसा दर्शन किया है? दर्शन का तो एक कण कण पता होना चाहिए। आज राधा रानी कैसी दिख रही है, आज हमारे गोविंद ने कहां पर मयूर पंख धारण किए हैं, आज कुमुदास प्रभु ने कहां पर मयूर पंख लगाए हैं, आज गोविंद ने कैसे माला पहना है, आज जगन्नाथ जी कैसे दिख रहे हैं, ये ध्यान होनी चाहिए। परंतु आज लोगों की ध्यान ये नहीं है, एक रिवाज हो गई, चलो टाइम पास थोड़ी सी, जैसे ट्रेन में चलते टाइम पास मुंगवाले टाइम पास मुंगवाले, आ जाओ लाओ भाई टाइम पास करते थोड़ी सी। तो ऐसे कभी कभार व्यक्ति इस दृष्टि से भी आ जाता है, चलो हरे कृष्ण हरे राम मिल जाए थोड़ी सी, एक उपन मिलेगी थोड़ी सी, बस पहले बैठ जाएंगे हैं, पीट देंगे प्रसाद, थोड़े देर बैठ कर टाइम पास कर चले जाएंगे। महाराज ये अनर्थ की प्रभु, ये बड़ा अनर्थ वाली बात है।
मनुष्य जीवन में समझिए ये सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर यदुक्षते। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों से वर्णन करते श्रीमद् भागवत में, सवई पुंसा परो धर्मो, जीव का परम धर्म होता है, प्रथम कर्तव्य होता है, प्रभु जी लोक मैया लोग कान खोल के सुनो, अगर आपसे पूछा जाए आपका सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है, कोई कह सकती पति के सेवा करना, कोई कह सकता है मुझे पुत्र चाहिए पुत्र के लिए परिश्रम करूंगा, कोई कह सकता है कि मुझे बिजनेस में उन्नति करना है, कोई कह सकता है कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ वर्षों से अमेरिका जाने के लिए, वीजा किस प्रकार का प्राप्त होगा, कोई कह सकता है कि भैया मेरी ब्याह एक सुंदरी छोरी से होनी चाहिए, प्रयत्न कर रहा हूँ सुंदरी लड़की मिल जाए, कोई कह सकती है कि मुझे लड़का चाहिए, मैं सुंदर वर की प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु मनुष्य जीवन का ये मूल उद्देश्य नहीं है खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना, ये कुत्ते भी करते महाराज। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य होता है सवई पुंसा परो धर्मो जतो भक्तिरि अधोक्षते, हमारे गिरिधारी की भक्ति करना, ये मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। हजार कर्म को छोड़ करके व्यक्ति स्नान करे, लाखों कर्म को छोड़ करके व्यक्ति भोजन ग्रहण करे, और इस प्रकार का करोड़ों अरबों खरबों कर्म को छोड़ करके गिरिधारी के प्रांगण में दौड़ करके आके कथा श्रवण करे महाराज, तो मनुष्य जीवन का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये बार बार नहीं प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मना अंत गोविंद ने कहा भगवत गीता में, करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य का देह प्राप्त होता है। कान खोल के सुनिए, मेरे बाप ने ये गीता नहीं लिखा, मेरे बाप के बाप गोविंद ने लिखा है, गोविंद ने कहा है बहुनाम जन्मना अंत, करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य का देह प्राप्त होता है। मनुष्य का देह माता बार बार नहीं प्राप्त होता, प्रभु जी लोग कान खोल के सुनिए, इसीलिए इसे वृथा मत जाने दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम पास मूंगफली सवा करके मत कीजिए। किसी किसी के पास इतनी टाइम होती है न जाने इतनी टाइम होती है, परंतु टेलीविजन में पिक्चर देख के खत्म कर देती मैया, और जब कहा जाता मंदिर आओ थोड़ी सी सत्संग सुन लो, अरे मैया की माला कर लो, प्रभु जी एक माला जब बोलो, अरे आ जाओ एक बार गिरिधारी के दर्शन करने, अरे प्रभु जी गोविंद जब वो चाहेंगे तब आयो, तेरे पास लेटर आएगा गोविंद के धाम से। लगता है हमारे गिरिधारी चिट्ठी लेकर भेजो, अब जी हम चाहते तुम आओ, अरे महाराज गोविंद तो चाहते तुम मेरे भजन करो। इसलिए भगवान ने बार बार कहा, सब जगत शास्त्र के अंदर कहा, सर्वधर्मान परित्यजम माम एकम शरणम व्रज, किसी और के शरण में जाने के लिए नहीं कहा, अहम त्वम सर्व पापभ्यो मुक्षयिष्यामि मा सुतः। ठाकुर ने कहा मैं तुम्हें समस्त कष्टों से मुक्त कर दूंगा, परंतु एक बार मेरे मंदिर में तो आओ, एक बार मेरे सत्संग में तो आओ, एक बार मेरे नाम तो ले लो। भैया हम लेते नहीं, कभी मंदिर नहीं आते, वृंदावन नहीं जाते, गिरिराज का परिक्रमा नहीं लगाते, गिरिधारी का दर्शन नहीं करते, अरे 10 रुपया नहीं डालते तो नोट चड्डी निकालते, उसमें से देखते किसमें सेलो टेप चिपका हुआ है, चारों तरफ देखेंगे और चुप से डाल देंगे, कहेंगे हमने तो दान दी, ओ लो जी तुम्हारे दान बड़ी दान दी तूने, ऐसे सोचते हैं। परंतु मनुष्य जीवन मैया बार बार प्राप्त नहीं होता, बड़े सौभाग्य से मिला है। इतना सुन लीजिए, ये गोविंद कहते हैं, गोविंद चाहते हैं कि सब मेरे भजन करके चले आए मेरे पास, इसीलिए तो जगन्नाथ बाहें फैला करके बैठे हैं। क्यों जगन्नाथ जी इस प्रकार के बैठे हुए हैं, आप सभी को बुला रहे हैं, दुनिया वालों को बुला रहे हैं, पूरी मीरा रोड पूरी मुंबई पूरी देश को बुला रहे, आओ आओ मैंने बाहुजा फैला करके बैठा। इसीलिए जगन्नाथ जी के एक नाम है महाभूजा, जगन्नाथपुरी में कहते हैं, ओ तो उड़िया लोग मेरी भाभी बैठी होगी कहीं, वो बोलती लिया, उसको कालिया बोलते हैं क्योंकि काले है ना, परंतु वो काले तो ऊपर से दिल का बड़ा साफ है, दुनिया के लोग ऊपर से बड़ी गोरी गोरा होंगे, महाराज दिल के बड़े काले होते हैं। जो नाम जपता है, जो नाम जपती है, जो भक्ति करता है, भक्ति करती है, उसी का दिल केवल साफ होता है, क्योंकि भगवान कहते प्रविष्ट करण रंधे न स्व स्वानं भाव सरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः तत्पाद सलिलं यथा भागवतम में सुखदेव महाराज कहते हैं, जैसे कृष्ण कथा व्यक्ति श्रवण करता है, जैसे भागवत सुनता है, भगवान के विषय में कुछ सुनता है, संतों की महिमा सुनता है, गिरधारी के लीला श्रवण करता है, जगन्नाथ के विषय में एक शब्द प्रविष्ट करण रंध्रेन कानों में प्रवेश करता है, स्वानम भाव सरोरुहम उसके हृदय पवित्र हो जाता है। ताली मत बजाइए, याद रखिए, धुनोति समलम कृष्ण कहा जाता है, उसके हृदय पवित्र हो जाता है। तत्पाद सलिलम यथा, क्योंकि कृष्ण कथा गंगा से कोई कम नहीं है। तत्पाद सलिलम उसको कहते हैं, गोविंद के चरणों से पाद कमल से गंगा की प्रकट भई है, गंगा गोविंद के चरणों से निकली हुई है। तो कृष्ण कथा ये भगवत गीता भागवत गोविंद के मुखारविंद से या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मदिनी श्रितम महात्म्य में कहा गया है। चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, महाराज चरण से तो गंगा निकली है परंतु मुख से गोविंद के ये भागवत निकली हुई है। हालांकि गोविंद के चरण गोविंद के मुंह में कोई अंतर नहीं है, परंतु देखा जाए तो चरण से मुंह ज्यादा अंतर होता है। तो कृष्ण कथा गंगा से कोई कम नहीं है, वो तो गंगा करोड़ों गंगा की तरह महाराज है। तो इसीलिए कथाओं को बड़े लगन के साथ सुना जाए, ये सौभाग्य से प्राप्त हुआ है मनुष्य देह। तो भागवतम एक ऐसी अलौकिक वस्तु है, केवल सुनने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय में भक्ति जागृत होने लगता है। केवल कृष्ण की विषय में सुनने से हमारी प्रेम गिरधारी से हो जाती, इतनी सरल उपाय है। अब आप मैया सब सोच रही होंगी, अरे हमें तो अपने पति से प्रेम करना है, ये गिरिधारी से क्यों प्रेम करनी है, अपने बच्चों से प्रेम करनी है, इससे छलिया से क्यों प्रेम करना है। महाराज इसी से प्रेम किए वक्त कल्याण नहीं है। जो इसे प्रेम किया तो पछताया, जो नहीं भी प्रेम किया वो भी पछताया। प्रेम जो किया वो तो पागल हो गई, जो प्रेम किया वो तो पागल हो गया, जो नहीं प्रेम किया उसके पीछे डंडा लगा, दोनों तरह से परेशान है महाराज। परंतु प्रेम करके पागल हो जाओ, चैतन्य महाप्रभु जैसे पागल थे। चैतन्य महाप्रभु को लोग पागल मानते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने दुनिया को शिक्षा दिया। दुनिया भले हमें कितना पागल कहे, दुनिया भले हमारा तिलक देख करके कितना खिले उड़ाए, दुनिया हमारे कंठी माला देख कर कितने मजाक उड़ाए, महाराज मत होइयो, तंग मत होना कभी भी। अगर तुम तंग हो गए, अगर दुखी हो गए दुनिया वालों के बातों से, झोली माला दीवाल में टंग गई महाराज, भागवत में लाल कपड़ा लगा कोने में धर दी, तब तो भक्ति नहीं था, डोंग थी, डोंग था वो। भक्ति तो उसे कहते हैं जिसमें आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, कदम कदम में जिसमें आनंद की वृद्धि हो रहा हो उसी को भजन भक्ति कहा गया है। वो भक्ति नहीं है महीनों से आ रहे हैं मंदिर, वर्षों से मंदिर आ रहे हैं, परंतु आज तक हमारे मन में जप करने की उत्कंठा नहीं हुआ, कथा सुनने की रुचि नहीं हुआ। कथा होती तो बीच में सोतक का प्रसाद होगी, कभी अपना सोच बंद करेगा वक्ता, ये भावना आती है तो भक्ति नहीं महाराज। भक्ति में आनंद की अम्बुधि होती है, बढ़ती है, इच्छा प्रगाढ़ होता है भगवान के विषय में सुनने की, भगवान के नाम जप करने की। सोलह माला तो नियम है महाराज, परंतु आप अधिक भी कर सकते हैं। जपी हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख पीटा गया 22 बाजार में, कोड़े से मारी गई और कह दिया गया हरिदास तुम्हें आज प्राण चाहिए, अगर तुम्हें प्राण तुम्हारी चाहिए ना तो तुम्हें हरे कृष्ण हरे रामा जप करना छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें प्राण नहीं चाहिए तो जपते रहो बेटा, तुझे 22 बाजार 4 यवन कोड़े से मारेंगे। नियुक्त किया गया, देख ले हरिदास ने कहा, खन्न खन्न है जाए यदि प्राण, तबुआ मीन छारी बुबदने हरिनाम। राजा का जी, अरे राजा बादशाह सुन ले, मेरे देह को अगर तूने टुकड़ा टुकड़ा भी कर दिया, अगर काट करके कोड़े से मार मार करके जाए यदि प्राण, तन से अगर प्राण भी निकल जाए, तबुआ मीन छारी बुबदने हरिनाम, तब पर भी मैं गोविंद का नाम नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे निष्ठा हो भगवान के प्रति। भगवान वास्तव भैया ये देखते हैं कि व्यक्ति की कितनी निष्ठा है मेरी प्रति। वास्तव में यहाँ जितने आए हैं, क्या मेरे से नेहा लगाने आए हैं, क्या मुझे प्रेम करना आए हैं? गोविंद ये सोचता अपने लिए नहीं कहते महाराज, गोविंद के लिए कहते। क्या गोविंद सोचते ही आप सभी को देख करके, हम सभी को देख करके गिरधारी अवश्य सोच रहे होंगे, सोचते हैं कि मेरे से प्रेम करने आया है, और सोचते नहीं बल्कि आपके हृदय में बैठ कर देख लेते हैं आपके हृदय में क्या चलता है, मैया क्या सोच रही है, प्रभु जी क्या सोच रहे हैं, ये बच्चा क्या सोच रहा है, ये गोविंद देख रहे हैं बैठे बैठे। आप चाहते क्या हो? इसलिए दुनिया में कोई सहमत रखिए, कुछ नहीं, कोई साथ नहीं देने वाला महाराज, सब बेकार है, सब नौसर है, सब तुच्छ है, झूठे सब है, कोई साथ नहीं देने वाला, पुत्र पत्नी घर धन संपत्ति समाज कोई साथ नहीं देने वाला महाराज। कान खोल के सुन लो, बिल्कुल अप्रिय सत्य वचन है, अप्रिय सत्य वचन संत इसलिए कहते, सुनने में अप्रिय लगता है परंतु है तो परम सत्य, साथ कोई देने वाला नहीं है। तो साथ कौन देता है? साथ तो हमारे गिरिधारी देगा, साथ तो हमारी राधा रानी देगी, साथ तो हमारे जगन्नाथ देंगे, दूसरा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए विनोद अग्रवाल जी आपकी गुजरात में बड़ा भगाते, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मोरे, कहते मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे सावरिया सरकार तुम्हारे अलावा मेरा इस जीवन में कोई सहारा नहीं है। इसलिए हे नंदलाल अहो रक्ष रक्ष माम, रक्ष कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। गोविंद का नाम नित्य बोलते रहना चाहिए महाराज। तो कथा श्रवण करने से भगवान से प्रेम हो जाती है, ये बात हम आपको कह रहे थे। इसकी प्रमाण है रुक्मिणी जी, आप लोग भागवत सुनते हैं रोज, बड़े बड़े आचार्य लोग हमारे सुनाते, बड़े बड़े संत पुरुष लोग, खैर हम तो उनकी दास है और हम आप लोगों के सामने ही छोटा सा साधु बने नहीं साधु महाराज, प्रयत्न कर रहे हैं आशीर्वाद की इसलिए अभिलाषा करते हैं ताकि आशीर्वाद कर मन भजन में लगा रहे। बहुत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरा पड़ा हुआ इस प्राणी के अंदर जो सामने बैठा हुआ है, परंतु आपकी आशीर्वाद अगर होगी तो हमारी कल्याण हो जाएगी, हमें विश्वास है। बड़े बड़े संतों के मुख से आप सुनते हैं, जो रुक्मिणी थी, रुक्मिणी का गोविंद से कभी मुलाकात नहीं हुआ था, कभी भी द्वारकाधीश से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो फिर ब्याह कैसे हो गया? द्वारकाधीश ने उसे उठा कैसे लिए? उस छोरी को कैसे उठा लिए महाराज? रुक्मिणी जी ने लव लेटर भेजी थी, तो लव उनसे कैसे हुआ था? प्रेम प्यार कैसे बनी थी? क्या गोविंद आते थे लाइन मारने जैसे आजकल लड़के मारते हैं? नहीं, गोविंद कभी ऐसे गलत काम नहीं करते। ये तो इस भौतिक संसार के हमारे जैसे बदजीव करते हैं, गंदे प्राणी करते हैं, ये गंदे करतूत हरकत मचा करके रखे हैं दुनिया में। महाराज इतनी भी इज्जत नहीं होता, सवेरे कमल लोचन प्रभु बता रहे थे, कल एक बड़े संत बड़े सुंदर प्रवचन कर रहे थे, उर्वशी और पुरुरवा महाराज के प्रसंग चलता है, उर्वशी के पीछे पुरुरवा पागल हो गया, ये इतनी पागल हो गया महाराज, इतनी पागल हो गया बताओ, उस पुरुरवा के इतनी सौंदर्य था, उस पुरुरवा महाराज के पास इतनी बल था, एक ओंकार मारते देवराज इंद्र खड़े हो जाते थे, वो पुरुरवा महाराज उस छोरी से इतनी पागल हो गए, उर्वशी के पीछे इतनी दीवाने हो गए महाराज, कहीं भी लेकर के बैठते थे, स्वर्ग में जाते थे, नंदन कानन में बैठते थे। इतना भी इज्जत नहीं है आजकल के लड़के लड़कियों को, मंदिर आते तो सट के बैठते हैं। अरे महाराज ये वो कार्य के लिए स्थान नहीं है, यहां आए तो गोविंद चरण में महा टेक, गोविंद से सटने का प्रयत्न कर, दुनिया से सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी, दुनिया से हटाकर एक ममता को गिरधारी से बांधने की प्रयत्न करो। परंतु आज तो हम सब दुनिया वालों के विषय में सुनते हैं, दुनिया वालों को टेलीविजन में देखते हैं, महाराज सब यही देखते यही सुनते हैं, इसलिए हमारी भौतिक बंधन इस संसार में बड़े रेशम की कीड़े की तरह प्रगाढ़ होते जा रहा है, जिसमें हम स्वयं ही मोह के दलदल में फंसते हैं, स्वयं ही अपने जीवन को नरकमय बनाते, स्वयं ही आओ दुख मेरे मस्तक पर बैठो, आओ दुख मुझे दंड दो, कष्ट दो, दुखों को हम स्वयं ही निमंत्रण करते, कोई कावन को सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, वो स्वयं अपने कर्म से बुलावा करता है। आज अगर आप सभी अगर कृष्ण के प्रति प्रेम करने लग जाए, सभी अगर गोविंद के नाम जपने जाए, तो हमारा किसके पास दम है आपके जीवन में दुख दे दे, किसी के पास दम है आपके पास जो है उसे हर ले। गोविंद कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्यभि युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने प्रणय लिया है, आप हमारी कही हुई वचन तो टल जाएगी। गोविंद ने गीता के 9वें अध्याय में प्रणय लिया है, परम गुह्य ज्ञान नाम है महाराज, गुह्य बातें बताते हैं, कहते कि जो अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई मेरे लिए भोग बनाती है, कोई मेरे लिए फल काटता है, कोई जैसे कृपासिंधु प्रभु आरती उतारते हैं, और जैसे कोई हमारे लिए सब्जी लाता है, कोई हमारे लिए कुछ कलेक्शन करता है, कोई हमारे हमें श्रृंगार करता है, कोई हमें दर्शन करता है, अरे कोई अगर मंदिर नहीं आता हमारे मनन करता है, इसको अनन्य भाव कहते हैं। इस प्रकार का भक्ति करने से भगवान क्या कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्। ठाकुर जी कहते हैं उसके पास जो कुछ है उसकी रखवाली में करता हूँ, और जो आवश्यकता भी है जीवन में वो भी प्रदान करता हूँ। यही दोनों चीज की भय है दुनिया वालों को, आप सभी को, जो है वो लुट न जाए, बैंक बैलेंस इतनी है घट न जाए, इसलिए रोज से करते, अरे जाके बेटा बेटा जरा डायरी जरा बैंक के खाता जाकर के क्या कहते हैं उसको टाइपिंग करवा के ले आना, कितनी अब हो गई जरा देखते हैं, इस बात की चिंता रहती है जो है वो लुट न जाए, और महाराज जितना है उतने में तुष्ट नहीं है, अस्थि प्राप्ति की तरह और चाहिए रजोगुणी की प्रवृत्ति भरा पड़ा हुआ है जीवात्मा के अंदर है। कथा सुनने नहीं आएंगे, प्रसाद किसने भर जाएंगे महाराज। ए महाराज हम 4 दिन पहले विदेशों से आए, वहां देखे कि इतनी बड़ी बुरी समाचार है, इतनी बुरी बातें हैं लोगों की, परंतु वहां के सिस्टम ठीक है, वो सिस्टम पे कह रहे हम क्या कहेंगे महाराज, परंतु हमें ठीक नहीं लगा। कथा जब चलती है बाहर सब मधुमक्खी की तरह बैठे रहते, कोई फोन में थोड़ी से बात करता है तो महाराज कोई किससे बात करता है, कोई कैसे लगा हुआ है, कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई लेटा हुआ है, कोई लेटी हुई है, कोई टहल रहा है, महाराज मंदिर इसके लिए नहीं। और जब प्रसाद की महाप्रसाद गोविंद होता है, कृष्ण कथा तो कानों में नहीं पड़ा, ये सब तो बड़े तीव्रता से कान में पड़ती है, क्योंकि अब तो मिलेगी, अब तो मिलेगी पकोड़े पनीर परोंठे, ठीक है भैया प्रसाद खाना ही बड़ा भक्त है, परंतु बिना कथा श्रवण किए प्रसाद खाएंगे तो बैल कथा बनना पड़ेगा, अगले जन्म में बैल बन के कर चुकाना पड़ेगा मंदिर को, इसीलिए बिना सेवा किए कुछ मत पाइए। सेवा का अर्थ ये नहीं होता कि आपको कहते यहाँ आओ मार्बल तोड़ो महाराज तभी सेवा हम मानेंगे, ना 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 ना, ना आपकी धोती गंदी हो जाएगी, साड़ी गंदी हो जाएगी मैया, ये काम नहीं कहेंगे मंदिर वाले। इतनी सी सेवा अगर कर लोगे मंदिर वाले प्रसन्न हो जाएंगे, इतनी सेवा करोगे साधु लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्या सेवा, आकर के यहाँ बैठ करके थोड़ी सी कथा सुन लो, एक बार जप लो अपनी फायदा के लिए, इतने से प्रसन्न हो जाते साधु, पर सुखी सुखी, ये साधुओं का जीवन इसीलिए। खैर आजकल साधु लोग तो भाव बदल दिए, वो बात अलग है हम नहीं जानते, परंतु ये लक्ष्य होना चाहिए साधु का, साधु ये चाहता है वास्तविक साधु, ये असली सेवा आप दे रहे हो जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, इसे हमारी प्रसन्नता छोड़िए गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण के विषय में सुनते थे केवल रुक्मणी, सुन सुन करके गोविंद से उनकी प्रेम हो गई, नारद जी के मुखारविंद से सुनते थे, द्वारकाधीश इतने सुंदरी है, उनकी एक से एक लीला है। ओ काली दमन लीला किए, सकटा भंजन लीला किए, अग्निपान लीला किए महाराज, और बकासुर को मार दिए, अघासुर को मारे हैं, त्रिणावत को मारे हैं, छेदनीय पुतना का वध कर दिया, एक से एक लीला है। साढ़े सात बरस की यह सप्ताहाय अनुबालई करणई के ललीलया सकृत बिभ्रत पुष्परम गिरिवरम पुष्करम दिवम। यो गिरिराज पर्वत को गोविंद ने धारण कर लिए, केवल सात वर्ष के एक से एक लीला हमारे गिरिधारी ने किया है। तो ऐसे लीलाओं को नारद जी के मुखारविंद से ये सुना करते थे। कौन सुना करती थी? मेरी माँ रुक्मणी सुना करती थी, रुक्मणी सुना करती थी। इसलिए उनकी प्रेम हो गया महाराज गोविंद से, इतनी जोरदार प्रेम हो गई, इतनी जोरदार प्यार हो गई। महाराज यही तो विधि है, किसी से भी प्यार करना है ना, यही विधि है। परंतु हम किसी से प्यार करने की विधि नहीं बताते, यहाँ बिठा करके हम प्यार करने का विधि बताते। अरे महाराज दुनिया से नाता तोड़ो, रघुनाथ जी ने कहा सबकर ममता ताग बटोरी, ममता को दुनिया वालों से हटाओ, लगाओ नेहातो गिरिधारी से, तुमसा ठाकुर और न पाया, इसीलिए गिरिधारी तुमसे मैंने नेहा लगाया। ऐसे कहो गिरिधारी से, प्रभु तेरे जैसा व्यक्ति दुनिया में मैंने नहीं देखा, तेरे जैसा भगवान मैंने दुनिया में नहीं पाया, तेरे जैसा दयालु करुणावान मैंने कहीं ना देखा, इसीलिए मैंने तुमसे नेहा लगाया, तुमसे प्रेम किया। इसलिए गिरिधारी बता लो मुझे जगन्नाथ, इस दुख में संसार से उधार कर लो मुझे, इतना कहो। गोविंद कहते अरे बस एक बार जो मेरे चरणों में गिर जाता है, अभयम सर्वदा तस्मयी ददामी तत्व्रतम मम। ठाकुर जी ने कहा हमेशा के लिए उस समय निर्भय कर देता हूँ, समस्त दुखों से उबार लेता हूँ, अम तम सर्व पाप भ्यु मुक्ति, मुक्ति प्रदान कर दूंगा। मेरे सालुक्य, मेरे सामिप्य, मेरे करीब, मेरे दीदी धाम पर उसे मैं बुला लेता हूं। केवल एक बार दिल से कहो नेहा लगा करके, गिरधर लाल तू मेरा है रे, मेरी और जरा झलक तो देख। अरे महाराज अब उल्टा दशा हो गया, गिरधारी की दृष्टि हमारी और, गिरधारी हमें हाल लगा करके बैठे हैं, कब मेरा भक्ति नहीं आएगी, कब मेरा भगत आएगा। परंतु भगत आज गिरधारी के सामने जाने में डरता है, डरता नहीं है, नौटंकी करता है कि हम नहीं जाएंगे मंदिर, माता लाठी खाएगी तू, डरना पड़ेगा बात में। गिरधारी आज नेहा लगा के बैठे, कौन भगत आएगा? भागी भोर और भगत ही हिल डोल कर गया थे महाराज। महाराज केवल पेट मत भरिए, बड़े संत कहते पेट मत भरिए, पेट भर दिया और थोड़ा सा हंस लिया, हिल डोल लिया, काम चल गया, ये मत समझिए। जीवन इसी से सलामत नहीं बनता, जीवन की सलामत बनती है पेट भरने से नहीं, गोविंद का स्मरण करके पेट भर लो, गोविंद के विषय में श्रवण करो, भगवान को देखो, इतने नेहा लगा करके देखो, खड़े रह जाओ, वृंदावन जाओ, बिहारी जी के पास एक मैया बैठी रहती है, रोज सामने के घटर है बिहारी जी के मंदिर से, जहां बाहर जहां लस्सी पीते हैं सब लोग, सामने एक घटर है। हम तो मैया को कई वर्षों से देखते हैं और उनके जीवन चरित्र के ऊपर हमने सुना, वो मैया की उम्र अभी लगभग 68 बरस की होगी, परंतु मैया 11 बरस की उम्र से वहीं लेटी हुई है, कुंवारी थी। उसकी माई बाप जब उनकी ब्याह करना चाहते थे, वैसे ही वो भाग गई, सबरी की तरह उनकी दशा, वो भाग गई घर छोड़ करके, ब्याह नहीं करना चाहती थी, वो तो हृदय को गिरधारी लाल से शादी कर ली थी, हृदय से वो बांके बिहारी से ब्याह कर ली थी, इसलिए चली गई बिहारी जी के मंदिरों में, दर्शन किया और बिहारी जी आत्मसमर्पण किया। बेचारी मैया है, किसी आश्रम में नहीं रह पाई, लड़की थी, भिक्षा मांगने लगी ब्रज में, और आज भी मैया बिहारी जी के समक्ष लेटी रहती है उस घटर के पास। कई बार देखा भरत प्रभु जी के साथ भी हमने गया, कई बार हमने देखा वहां पर। तो ऐसे प्रेम होना चाहिए, ऐसे लगन होना चाहिए गोविंद से, तभी ये मनुष्य जीवन सार्थक माना जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है गोविंद से, ठाकुर से हम सभी की संबंध बनाना या भगवान का सुमिरन करना क्या आवश्यकता है, प्रश्न उठता है। भैया गोविंद अपने जगह पे, हम अपने जगह पे, हम कमाते धमाते, हम परिश्रम करते, हम खाएंगे स्वयं, उसे अर्पण करने की क्या जरूरत है, उसे देने की क्या जरूरत है। अरे हमारे पास डायमंड की फैक्ट्रियां चलती है, हमारी कपड़े की दुकानें चलती है, हमारी इतनी बिजनेस चलती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई ये कह सकता है हमारी इतनी बड़ी व्यापार चल रही है, क्या हो गया भैया वहाँ? बैठ जाओ मैया सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई ये सोच सकता है मेरी इतनी बड़ी बिजनेस व्यापार चलता है तो मैं इसी से ही काम चला लूंगा, महाराज ऐसे काम नहीं चलता। तो भगवान की भक्ति करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? कोई ये कह सकता है कि हमें भजन करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास इतने सब कुछ तो है। देखो मैया, जो लोग डिस्टर्बेंस है अगर कुछ दिक्कत है वहां तो वो सॉल्यूशन निकाले वहां, परंतु जो लोग बैठे हुए ना वो अन्य मनस्क मत होइए, वो मत इधर उधर देखिए। जो भी वहां दिक्कत है मैया से प्रार्थना है कि वो कर ले, सुलझा ले कि क्या बात है वहां, सब इधर उधर पीछे मत देखिए। तो कोई ये कह सकता है कि गोविंद से गोविंद का भक्ति करना हमें क्यों इतना आवश्यक है? महाराज आवश्यक है। क्यों आवश्यक है जानते हैं? इस श्लोक की अर्थ सब दृष्टि डालिए। इस श्लोक में भगवान सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं निवृत्त तस्तैर उपगीयमानात भवौ सदा सूत्रम मनोधिरामात। हमें एक बीमारी लगी पड़ी है महाराज, हमें एक ऐसी बीमारी लगी पड़ी हुई है, ये देखो सामने बगल में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे भी बीमारी ठीक किए हैं, हमारी प्राचीन डॉक्टर है महाराज। तो महाराज दुनिया में कोई भी बीमारी हो ऐसे डॉक्टरों के पास जाओगे तो ठीक हो जाएगा, जय अम्बे जाओगे ठीक हो जाएगी, भक्ति वेदांत जाओगे वहां जाओगे तो ठीक हो जाओगे महाराज। परंतु एक ऐसी रोग सबको लगी हुई है जिसको भव रोग कहते, हृदय रोग कहते, जिसका इलाज कहीं भी नहीं हो सकता। अरे जिसका इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में नहीं हो सकता, हमारे डॉक्टर साहब ही हाथ खड़े कर देंगे। बेटा ये हमारी बस की बात नहीं है, इसकी इलाज होगी मीरा रोड सृष्टि में। अरे कृष्णा, अरे भाई यहीं पे भावरोग की बीमारी यहीं पे इलाज होती है। डॉक्टर मैं जैसा साधु नहीं, जैसे कमलोचन प्रभु जैसे, कुंडल कृष्ण प्रभु जैसे, बनवाली प्रभु जैसे, पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जैसे, पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसे, भक्तिचार्य स्वामी महाराज जैसे, जय पताका स्वामी महाराज जैसे, ऐसे ऐसे महाराज की, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुंदर संतों के पास इनकी इलाज है। जो हृदय लोग हमें लगा हुआ है, जो भवरोग लगा हुआ है, वो भवरोग से सब पीड़ित है। परंतु ये क्या अलौकिक की बातें हैं, आश्चर्य की बातें हैं। सब तनावग्रस्त है, सब दुखी आ रही है, सब मैया, सब प्रभु जी लोग दुखी है, परंतु किसी को पूछो तो कहो मैं बड़ा खुश हूं महाराज, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन कहते हैं। महाराज कोई फाइन वाइन नहीं है, फाइन तो तुम्हें ऊपर से लगी पड़ी है, फाइन नहीं है महाराज। बीमारी हो तुम कैसे फाइन हो सकता है? ये मूर्खता वाली बातें हैं, वो ऐसी बातें हैं, सब अपने दुख को छिपाते महाराज। सब दुखी है इस दुनिया में, जैसे कि बीमारी पड़ा हुआ है, जैसे हमारे शुद्ध सिंह प्रभु जब पड़े हुए थे अस्पताल में महाराज, हम जब गया था देखने के लिए, हमने पूछा प्रभु जी अब कैसे हो? ओ अब तो काफी ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। तो शुद्ध सेवक प्रभु ही है, वो कहते मैं ठीक हूँ। मैं बोला ठीक कैसे महाराज, हिल तो हिल डोल नहीं सकते। बोला पहले से ठीक हूँ, यही आपकी और हमारी दशा है। जब हम पूछते कैसे हो मैया, प्रभु जी बस आपकी कृपा ठीक है। और ठीक है महाराज, क्या ठीक है? अब थोड़े देर खड़े हो जाओ, जीवन की लाइफ स्टोरी सुनाने लगेगी, लगेगा कि दूसरा रामायण बोल रही है क्या मैया। ओ लो जी, थोड़े देर खड़े हो जाओ, जीवन की वृतांत शुरू हो जाएगी। जीवन की इतनी लंबी दुख सुनाने लग जाएगा व्यक्ति, सुनने वाला तंग हो जाएगा, भैया बंद कर, अब मैं सड़ गया दिमाग मेरी, हम खुद ही परेशान है और तेरे दुख सुनने के लिए आया। ये तो रिवाज बन गई कि ये कहा जाता है कि बस कैसे हो, विदेश में महाराज जब वो किसी व्यक्ति से मिला जाता है ना, तो ये पूछना बहुत आवश्यक होता है, ये वहां की संस्कृति है। सवेरे सवेरे देखो तो कहो गुड मॉर्निंग, बस सवेरे सवेरे ये कहो, साथ साथ में ये भी जरूरी होती है, वहां की भाषा अगर आती है तो बस ताकू लाकू जा पा बोला जाता है, तो इली भाषा मतलब कैसे हो तुम। अगर ये नहीं आता तो बस इतना पूछा जाता अंग्रेजी में, हाउ आर यू, और वो व्यक्ति ना प्रसन्न हो जाता क्योंकि हमें पूछा। अगर आपने उसको नहीं पूछा, थोपड़ा फुला करके घूमेगा कि हमें पूछा ही नहीं आता, यूं ही उतना बड़ा मुंह फुला लेगा महाराज, क्यों अब हमें पूछा ही नहीं, बात में फिर समय आने पर बोल देगा तुमने मुझे सवेरे सवेरे मेरा स्वागत नहीं किया। ये रिवाज है वहां के लोगों का। महाराज सब कहते कि आई एम फाइन, हम खुश है, कोई खुशी नहीं है, सब अपने दुख को छिपाते हैं, सब छिपाते, सब दुखी है, तो सबको एक भवरोग लगा हुआ है। हमने इसी मंदिर में आज से 6 बरस पहले के कथा सुना था किसी संत के मुखारविंद से। एक बार कोई एक मरुआरी व्यक्ति आया था, अब हम नाम ले लिया क्षमा चाहते हैं, बंबई में आया था। महाराज महाराष्ट्री लोग थोड़े अच्छे होते, खतरनाक भी होते हैं कुछ किसी किसी दृष्टि में, तो वो बंबई आया था घूमने के लिए। महाराज जब घूमने के लिए बम्बई आया था तो अपने परिवार के साथ आया था, मरुआरी था महाराज, राजस्थान से आया हुआ था, पत्नी साथ से थी, एक छोटी सी छोरी थी और एक छोटी सी नन्ही सी मुना हाथ पर, मुना मुनी छोटे छोटे बच्चे दो थे। तो इस प्रकार वो ट्रेन में चढ़े, और सबको अनुभव है मैया कि यहाँ के जो मीरा रोड में अगर आप ट्रेन में चढ़ेंगे सवेरे 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 9 बजे 6 बजे किसी भी टाइम पर, 12-1 बजे से पहले अगर सवेरे आप चर्च गेट साइड जाने के लिए चढ़ेंगे ट्रेन में, वो नानी की सुमिरन हो जाती है, गोविंद का सुमिरन हो जाता है पीछे महाराज, ऐसे लगेगा कि प्राणी ही चला जाएगा। अरे महाराज हैंड साफ, ऊपर अगर हाथ कर दी भले जेब पूरी साफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हाथ ऊपर से नीचे नहीं होगा, ये कंडीशन है यहाँ की ट्रेन की। वो लालू जी थे, कितने ट्रेन चला चला के चले गए, अब कोई माता बनी है कलकत्ता के, वो भी कितने और बढ़ा दी, परंतु पब्लिक घट नहीं। तो उसी भीड़ में उस मरुआरी में चढ़ गया, और चढ़ गया तो जैसे ट्रेन में जैसे तैसे सीट मिल गया, तो बगल में एक महाराष्ट्र बैठा हुआ था। महाराज बुरा मत लगाना कोई भी, क्यों बुरा लगाएंगे, हमें पाप लग जाएगा, अपराध लग जाएगी। बगल में एक पुरुष बैठा हुआ था बम्बैया वाला बाबू, वो तो वैसे राजस्थानी वाले बाबू थे, जैसे बगल में बैठे तो उनका जो मुना था छोटा सा बच्चा था, महाराज बच्चा है क्या जानता है, थोड़े देर में वो कपड़ा गिली कर दिया अपना, वो थोड़े देर में विसर्जन कर दी, सुसु कर दिया, जैसे सुसु किया महाराज, वो सुसु बहते बहते ये जो लोकल ट्रेन है इस सीट में होल सिस्टम नहीं है, अभी अभी जो नया ट्रेन निकली हुई है उसमें सीट में होल है, कुछ भी डालो नीचे गिर जाएगी, परंतु ये जो ट्रेन है वो तो एकदम फ्लैट है, एकदम पूरा फ्लैट की तरह बनी हुई है, सब सीट कुर्सी की तरह है। तो वो गंगा जी की धार बहते बहते बगल में बम्बैया बाबू के प्यांट गीली होने लगा। सुनिए सच बात, जब कपड़ा गीले होने लगा तो उसी में हमारे संत भी बैठे हुए थे बगल में, तो बम्बैया वाले बाबू देखने लगे तो कपड़ा गीला हो रहा क्या बात है, देखे कि गंगा जी कहां से बह रहे हैं, बगल वाले मुन्ने के वहां से, तो गंगा जी की धारा वहीं से लगी है। तो वो बड़े गुस्से से उस गृहस्थ को डांटने लगे, तुझे अगर बाल बच्चे को लेकर के आना है तो गाड़ी करना चाहिए था, सच बात है महाराज, और तुम इतनी गर्दी में बच्चे को लेकर के चढ़ गया, और देखो बच्चा ने पेशाब कर दिया, मैं ऑफिस जा रहा था, अब क्या करूं। वो भी मरुआरी था हमारा, वो भी चढ़ गया। बोला तू क्या समझता मैं बम्बई में हूँ, बम्बई या मैं क्या कुछ नहीं बोलूंगा। वो चढ़ गया, जैसे वो खोपड़ी पर चढ़ा, वो तू खोपड़ी पर चढ़, मैं भी खोपड़ी पर चढ़ता हूँ महाराज। वो भी थोड़ा चढ़ गया, महाराज तो मेरा ही है, अपने देश में अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, इसीलिए तो कंस ने गोविंद को बुलाया था। अरे हमने वृंदावन जिस जिस को भेजा उस कन्हैया ने सबको मार डाला, अब कन्हैया को यहाँ बुलाओ, नंदलाल को यहाँ बुलाओ, देवकी के पुत्र वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव को यहाँ बुलाया जा, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, यही उसको दबोच लूंगा, भानजा को आलिंगन करूंगा। आओ भानजा, अरे मेरे आलिंगन से बड़े बड़े पर्वत चुरमार हो जाता है, हर 11 बरस के बच्चा आलिंगन करते गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। उसको क्या पता था कि किसी के बाप है वो, जिसको मारने के लिए अपने नगर में बुलाया और उल्टा ऐसा हो गया अपने ही काल को अपने नगर पर बुला लिया। भगवान ने गए कंस को एक तमाशा मारे कनपट्टी पर, एक दे चढ़ाया तमाशा कनपट्टी पर, और कैसे पटक करके मर गया कंस। केवल एक तमाशा, वो रामानंद सागर के कृष्ण सीरियल में आ रहा डिजुम डिजुम फाइटिंग चलती है महाराज, वो फाइटिंग नहीं हुआ था। अरे गोविंद ऐसे नालायक उससे फाइटिंग करेंगे, अरे एक तमाशे के लिए उसका जान नहीं था। बल्कि कंस का बल का वर्णन की जाती है, चाणु मुस्तिक जैसे बड़े बड़े मल्ल योद्धा को अपने बस में कर रखा था। इसीलिए जरासंध ने अपने दोनों पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से करवाया, क्योंकि कंस जैसा परम वीर परम बलवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं था, इसीलिए वो विवाह करवाया था उनसे। और कंस एक मुष्टि का प्रहार करता था, आपके महाराष्ट्र में कितना भी बड़ा पर्वत लाइए, अरे ये तो एक कण है, इसका हजार गुना बढ़कर के गंधमार्दन पर्वत होता है, 1,00,000 योजन लंबाई, 1,00,000 योजन चौड़ाई, इतने विस्तीर्ण पर्वत को कंस अगर एक मुष्टि का प्रहार करता था आटे की तरह चुरमार हो जाता था। ऐसे परमवीर कंस को हमारे गिरिधारी ने, जगन्नाथ ने, नंदलाल ने केवल केस पटका मामा हरि काम खत्म, एक तमाशा कनपट्टी पर दिया और खत्म। ये गोविंद की बल है, ये गोविंद की सामर्थ्य है। तो परम भगवान कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, तो जीव का ये स्वरूप है, भगवान के भजन करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कहते इस श्लोक के अंदर, सुखदेव गोस्वामी जी कहते दुनिया में सबको रोग लगा हुआ है, परंतु सब अपने दुख को छिपाते हैं, जैसे उस मारवाड़ी व्यक्ति की घटना। जब कपड़ा गीला हो गया उसका, तो उन्होंने उसको डांटा, वो बम्बैया वाला ने कहा कि तू मेरे को डांटता है, खुद ही तेरा बच्चा ने सुसु किया और तू मेरे ऊपर चढ़ रहा है, आप उनको क्या समझता है, काय समझ बोला टिगड़े सरगा, और दे गणपति पर एक चढ़ाया कान पे, समझता क्या है तू, चल उधर चल। वो कनपट्टी पर चढ़ा दिया, खैर वो तो था महाराज वहां के परदेशी, महाराज डर के मारे वो चुप हो गया। तो उसने कहा कि अच्छा तूने मुझे मारा, मेरी पत्नी को मार के दिखाई, मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा ऐसी बात, दे पत्नी के कनपट्टी पर चढ़ाया महाराज। अब थोड़े देर में कहने लगा, तूने मुझे मार दिया कोई बात नहीं, पत्नी को मार दिया, तू मेरी ये जो बच्ची देख रही है 11 साल के जो बच्ची देख रहा है उसे अगर मार देगा मैं मान जाऊंगा। ओ महाराज जवान झूठ जाते धम करके चढ़ाया है। देख चढ़ाया उसको महाराज, उसको पीट दिया। अब थोड़े देर में बोला कि देखिए तुम्हारा मुन्ने को जो मेरे पत्नी के गोद में, मेरे मुन्ने को जरा पकड़ी हो, मेरे मुन्ने को जरा मारी हो, मैं देना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मुन्ने आज तेरे मुन्ने उसके फिसारे के कान पड़े, उसको एक धमाशा चढ़ा दी महाराज, तमाशा मार दिया। अब बेचारा चुप हो गया, अब दूसरे किसी स्टेशन पर उतरना था, उतर गया बेचारा, साथ में जो साधु बैठा था वो असमंजस में पड़ा था, समस्त लीलाओं को देख रहा था, वो भी किसी और आगे स्टेशन में जाने वाला था, वो भी वही उतर गया पूछने के लिए कि भैया रहस्य क्या, हम समझ नहीं पाया, भागवत तो हम समझ जाते, गीता तो हम समझ जाते, परंतु तुम्हारी दिव्य लीला हम समझ नहीं पाया। अरे महाराज तूने तो मार खाया, पत्नी को भी पिटवाई और साथ साथ में छोरी को भी मरवाया, मुन्ने को भी मरवाया, क्या लफड़ा क्या है, जैसे उतरा वो व्यक्ति, उससे संत ने पूछा कि बाबू क्या बात है भैया, तुम यदि मार खाए चुप रहते, थोपड़ा क्यों खोला तूने, सबको क्यों पिटवाया? तो उसने कहा कि साधु को साइड में ले लिया पत्नी से हटा करके, बोले इधर आइए। साधु को महात्मा होकर के नहीं समझ पाए इतना, बोले बस यही तो कमी है हमारे अंदर। बोले कि बात ऐसा है, अगर मैं अकेले मार खा करके जाता तो मेरी पत्नी गांव में बोलती और मेरे हस्बैंड ने मार खाया बॉम्बे में, मेरे पति ने तमाचा खाया महाराष्ट्र ने कनपट्टी पर चढ़ाए बरात। अब बेटी भी कहेगी तब तो हाँ हाँ मैया सही बोल रही है, ओ लो नमक और छिड़क दी। तो उसने कहा कि अच्छा पत्नी को मरवाए, बेटी को क्यों ना, बेटी भी साथ देगी इसलिए बेटी को, और मुन्ने को भी चारा। बोले कोई, मैं चाहता था कोई भी मुंह ना खोले, सबको तमाशा पड़े महाराज। ले इस कथा से एक बड़ा शिक्षा मिलती महाराज, ये जो कथी है इसमें से एक बड़ा सुंदर शिक्षा हमें प्राप्त होता है, जहां तक हम समझ रहे हैं एक शिक्षा मिलती है दुनिया में हमारी और आपकी। अब मत हंसना क्योंकि अब तो दुख की बारी आ गई, दुनिया में आपकी और हमारी यही दशा है, सबकी दुख अपने हृदय में, हंसते तो ऊपर मन से हंसते महाराज। दुनिया में सभी दुखी है परंतु पूछने पर कहती है मैया, पूछने पर प्रभु जी कहते हैं हम सुखी हैं, परंतु अपने दुख को सब छिपाते हैं। सोनी वाले सर्कस कथा सुने होंगे, 25 पैसे की टिकट, गांव के सरपंच पहले लाइन में था, पूरी गांव वाले लाइन लगे हुए, सरपंच गया देखा ओ सर्कस तो देखने नहीं मिला, मां कन बड़ी पर दे धमाधम मारे, बड़ी सी पंडाल लगी हुई थी, टिकट की कीमत भाव केवल सवोनी था, आज तो सवोनी चलती नहीं है, सवोनी ही था टिकट की कीमत, पूरी गांव में भीड़ लग गया था, टाकेश्वर भाजी टाकेश्वर खड़ा अंधे की नगरी चौपट राजा महाराज। सवोनी की टिकट में पूरी गांव लंबी लाइन लगी हुई थी, सरपंच पहले खड़ा था, जब अंदर गया दर्शन करने के लिए सर्कस देखने के लिए, सर्कस पंडाल में एक भी हेलोजन नहीं लगी थी, एक भी झगमग करने वाला लेंस नहीं लगा हुआ था, एक भी लाइट नहीं लगी थी, परंतु उस समय उन्होंने जब इधर उधर देखने लगा कहां है सर्कस, तब तक एक अफ्रीकान की तरह काले से व्यक्ति आया, धम से कनपट्टी पर दिया। पूछा भैया सर्कस कहाँ है, बोला फिर पूछ रहा है, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो फिर से मारा, वो सोचने लगा गलत रोड पे आ गया, तो इधर उधर देखने लगा, दो आए धमाधम और पीटे, और पीटे फिर पूछने लगा सर्कस क्या, बोला थोपड़ा बंद कर पत्तीसों बाहर कर देंगे नहीं तो, सर्कस कहाँ है, सहोनी में तेरा बाप सर्कस दिखाएगा, सर्कस कहाँ है। अब उठा करके बिचारे को बाहर फेंक दिए, अब गांव वाले तो राहा लगा करके बैठे हैं, सर्कस की नियम था महाराज गेट के अंदर 1% केवल एंट्री करेगा, एक व्यक्ति जाएगा दर्शन करेगा, एक दर्शन तो भगवान की होती है, सर्कस देखेगा, देख करके वापिस आएगा, नियम था। तो गांव वाले बात अनुभव पूछने के लिए कहे थे कि कैसी रही सर्कस मैया, अरे महाराज वो तो सरपंच गया हुआ था, जब वो आया उससे पूछा गया वो सरपंच जी कैसा रहा सर्कस, वो तो अपना कुर्ता पुर्ता बढ़िया सा साफ करके महाराज जाए भाई बढ़िया सा मार के एकदम निकला, जैसे किसी को पता ना चले। उसके बाद वाला जो नंबर में था उसने पूछा सर्कस कैसा रहा भैया, तो उसने कहा वाह क्या सर्कस है, ऐसी सर्कस हमने कहीं न देखा, सस्ता सुंदर मजबूत सर्कस। इतनी बढ़िया सर्कस तो उनमें हमने कहीं न देखा महाराज, जीवन में और देखने में नहीं मिलेगी। अरे तुम भी जाओ, वो बिचारा को इतना प्रेरणा मिला वो भी गया, उसको भी कनपट्टी पर चढ़ाया गया, वो भी जब उसे बाहर पटक दी वो भी अपना कपड़ा साफ करके बाहर निकला, उसे पूछा गया कैसा रहा सर्कस, उसने कहा वह क्या बढ़िया सर्कस भैया, अरे तुम भी जाओ देर मत करना, जाओ जाओ जाओ। महाराज उसको भी पहले दिया, जब वो गया उसको भी ऐसे ही दमादम पड़ा, पूरी गांव वालों मार खा गए, सरपंच मुखिया जो न्याय करने वाला वो भी मार खा गया। महाराज सब एक दूसरे को सोच रहे थे, लगता पहले वालों को बढ़िया सर्कस दिखा, मुझे थापोड़ मारा, मुझे तो प्रहार किया, मेरे से पहले जो गया उसी को सर्कस दिखाया है। परंतु महाराज दुखी सब थे, कोई एक दूसरे को नहीं कह रहे थे हमने मार खाया। तो दुनिया में सबकी दशा मैया यही है, पूरी दुनिया की, नगर की, पूरी देश की, राष्ट्र की, समाज की यही दशा है। अंतकरण में सबको त्रिताप सता रहा है, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक क्लेश से सब पीड़ित है, सब सतगुण रजगुण तमगुण ग्रस्त है, माया के कब्जे में सब है, सब त्रिगुणातीत होकर के, त्रिगुणा गुणा के वशीभूत होकर के सब दुख पा रहे। मनोहस्तानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती, घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह दधिमंथन की जाती है इस प्रकार इस दुनिया में हम सब रगड़े जा रहे हैं। ये दुनिया को श्रीपाद चक्रवर्ती पाद कहते हैं, एक दुनिया ऐसा है, ये चक्की है, चक्की, खैर आज तो चक्की मशीन को कहते हैं, परंतु गांव के लोग समझते भागवत पूज्य महाराज कहते चक्की होता है, चक्की गोल गोल, एक पत्थर की एक पीस होती है गोल सा, दो पीस होता है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर चक्की सा, और बीच में एक लोहे की सलाखे होती है। ये दुनिया ऐसे ही चक्की समझ लो, और उस चक्की के बीच में पहले के गांव के लोग गेहूं चना मूंग उड़द कुछ भी वो उस चक्की में बीच में डालते, और उस चक्की को ऐसे घुमाने से वो गेहूं पीस करके आटे के रूप में परिवर्तन होता था। आज भी गांव के लोग पीसते हैं, परंतु उस बीच में चक्की के बीच में एक सलाखे हैं, जब गेहूं को उस चक्की में डाला जाता है, चक्की को जब घुमाया जाता है तो सारे गेहूं पीस जाती है, आटे बन जाता है, अपने स्वरूप को बड़ा कष्ट पहुंचता है। परंतु एक दो गेहूं, दस बीस गेहूं पीसती नहीं है, नहीं पीसता है वो। कौन गेहूं नहीं पीसता है? जो सलाखे के जड़ में रह गया हो, जो सलाखे के शरण ले लिया हो, वो व्यक्ति वो गेहूं कभी नहीं पीसता। तो दुनिया अगर चक्की हो गया तो आप सब मैया प्रभु जी बच्चे हम सब गेहूं हो गए, और काल इसी चक्की में हमें गेहूं की तरह डाल करके पीस रहा है। तनावग्रस्त सब दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई किससे दुखी है, कोई धन क्यों नहीं मिलता दुखी है, महाराज किसी का ब्याह नहीं हो रहा दुखी है, महाराज किसी की ब्याह हो गई बच्चे क्यों नहीं हो रहे दुखी है, महाराज सब किसी ना किसी प्रकार से तनावग्रस्त है। तो चक्की में सब पीछे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हम सब, परंतु इस चक्की में वो व्यक्ति नहीं रगड़ेगा, वो स्त्री नहीं रगड़ेगी, वो पुरुष नहीं रगड़ा जाएगा, उस व्यक्ति को चक्की एक बालिग उसका वाका नहीं कर सकता। कौन? जो उस बीच में चक्की के बीच में जो सलाखे है, जिसने उसका शरण ले लिया, वो गेहूं कभी नहीं पीसता। तो सलाखे कौन है महाराज इस दुनिया रूपी चक्की में? हमारी गिरधारी। तो इस दुनिया में सलाखे हो गई गिरधारी, दुनिया हो गया चक्की, आप सब हो गए हम गेहूं, हम सब पीसे जा रहे हैं, परंतु गिरधारी के सलाखों के, इस गिरधारी के चरणों में जो गिर जाता है, जगन्नाथ के चरणों में जो गिर जाता है, गौरांग महाप्रभु रूपी सलाखे के शरण जो ले लेता है, महाराज उसका एक भी बाल नहीं बगा हो सकता। जाको रखे साइया मारे सके न कोई, जग वैरी जो हो बाल बका कर न सके, जग वैरी जो हो कहते हैं। गोविंद के शरणागत होते ही उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर सलाखे के शरण नहीं लेंगी मैया, प्रभु जी सलाखे के शरण अगर नहीं लेंगे तो कान खोल के सुन लो, तैयार हो जाओ चक्की में पीसने के लिए। ये चक्की ऐसा घूमते रह रहा है, काल रूपी चक्र ग्यारहवें अध्याय पढ़ी है, ये तो कालो अस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो, भगवान कहते मैं काल हूँ, मैं तो किसी का इंतजार नहीं करता, मैं अपना समय के अनुसार अतिक्रम करते चल रहा हूँ, सबको चबाते जा रहा हूँ। तुम तो अगर अर्जुन, तुम अगर सोचते हो मैं छोड़ दूंगा ये जी जाएंगे, देख देख मेरे दांत के कणों में पितामह भीष्म कैसे लटका हुआ है, सांग जिस प्रकार व्यक्ति खाता है, तो मैं क्या कहते वो सब्जियां खाने के बाद दांत में चिटक जाता है ना, तो ऐसे कौरव सेना सब गोविंद के दांतों में, काल रूपी गोविंद के दांतों में सब चिटके हुए थे, मैं सबको चबा रहा हूँ समय के अनुसार। तो चक्की में सब पीस जाएंगे हम, इसीलिए इस चक्की से बचने के लिए महाराज, इस भवरोग से बचने के लिए गोविंद के नाम ग्रहण कीजिए। यहाँ पर कहा गया है स्पष्ट रूप से इस संसार में सब दुखी है, ये संसार में सबको बड़ा भयंकर रोग लगा हुआ है, ये टीबी बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर, एड्स, ये बीमारी बड़ी बीमारी नहीं महाराज, इसकी तो इलाज ही निकल गई, सबसे बड़ा इलाज आप सब सोच लीजिए, ये जो जन्म होते ही बीमारी लेकर के आता है माँ के गर्भ से, जन्म लेते ही बीमारी लेकर के आती है माँ के गर्भ से, वो बीमारी है भवरोग, जिसको कहते हैं उस भवरोग से अगर मुक्त होना है, इस भवरोग रूपी व्याधि से मुक्त होना है तो बड़े बड़े अस्पताल में जाने से मुक्त नहीं होगा, दिल्ली के अस्पताल में चले जाओ मुक्त नहीं होगा, डॉक्टर साहब आपको मुक्त नहीं कर सकते, किसी भी कैप्सूल नहीं निकला भवरोग से आपको मुक्त कर दे, किसी भी मेडिसिन स्टोर पे ऐसा कोई भी कैप्सूल टैबलेट नहीं है जो आपको इस भवरोग से तार दे, एक ही दवाई खाना है वो है गिरधारी के मंदिर, एक ही दवाई वो है गोविंद के नाम, सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो कहते हैं का उत्तम श्लोक गुणानुवादान, सबसे दवाई इस दुनिया में भगवान के महिमा का श्रवण, भगवान के गुणगान, मंत्र जाप करो, भगवान की विषय में श्रवण करो, ये सबसे बड़ा दवाई है इस भवरोग से पार पाने के लिए। अब प्रश्न उठता है भवरोग से पार पाने का क्या दूसरा उपाय नहीं है? नहीं, नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलिसंतरण उपनिषद खोलिए महाराज, पढ़िए उसमें क्या वर्णन है। ठाकुर जी कहते हैं नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, किसके अलावा? गोविंद के नाम के शरणागत के अलावा, गोविंद के विषय में श्रवण किए अलावा, गिरिधारी के दर्शन किए अलावा, घरों में लाला को रख करके पूजा न करने के अलावा अगर कोई और कोई मार्ग ढूंढता है तो ठाकुर कहते हैं नातः परतर उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही एक उपाय है, मेरी सुमिरन करो, मेरे चिंतन करो, यद करो सी यद स्नासी अज्योह सी ददासी यद यद तपस्वी सी कुमते तत्पुरुष मदर्पणम मनमना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम से प्रतिजाने। अर्जुन मुझे प्राप्ति करना चाहता है, इस भौतिक संसार से अपने को उबारना चाहता है, मुझे जानना चाहता है, तो एक सरल उपाय है, मेरी शरणागत हो जाए वो। अर्जुन इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है मुझे पाने की, इसके अलावा इस भौतिक संसार के दुख से छूटने के लिए मैया दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रभु जी, इसलिए उपाय है वो है गोविंद के सुमिरन, बस गोविंद के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठाकुर जी का क्योंकि ठाकुर जी इस कलियुग में अर्था विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी इस कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, नाम महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं, इसीलिए नाम महाराज के शरणागत लीजिए, देखिए कैसे आपकी बेड़ा पार होगी। नाम को छोड़ करके अपना काम बनाना चाहने वाला व्यक्ति का कभी कोई काम नहीं बनेगा। पूज्य राघवेंद्र स्वामी कथा सुनाते, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण रोज आटा भीख मांग मांग करके लाता था, कुछ आटा इकट्ठा किया था और रात्रि में जहां सोता था ऊपर सिक्के पर टांग करके रखता था एक मटके में, एक मटके में वो आटे को टांग करके रखता था और नीचे लेट लेट क्या सोचता था भैया जानते हैं? यही सोचता था आज हमारे पास 2 किलो आटा हो गई, 4 दिन के बाद में और आटा हो जाएगा और जब 10 दिन के बाद में मेरी मटका भर जाएगा 10 किलो आटा हो जाएंगे, 10 किलो आटे होने के बाद में क्या करूंगा, दिमाग चला मीरा रोड स्टेशन पे लेकर लगाऊंगा और वहां उसको बेच करके बढ़िया सा धन कमाऊंगा और उस धन से बढ़िया से मकान बनाऊंगा, एक छोटी सी बिजनेस चालू करूंगा, ये लेटे लेटे सोच रहा था, फिर ब्याह करूंगा और एक बच्चा पैदा करूंगा, डालमिया में एडमिशन करवा दूंगा और उसके बाद उसको मैं जो भी कहूंगा मेरी सारी बातें मानेगा, कहेगा बेटा चरण दबा तो मेरी चरण दबाएगा, बेटा मेरे लिए सिगरेट ले आइयो सिगरेट ले आएगा, जो कहूंगा सो करेगा, बेटा जिस दिन मेरे बाप से बाहर जाएगा वो दह करे के ग्लास मारूंगा, ऐसा सोच करके स्वप्न में ब्राह्मण टांगे उठा ली, माना टांगे सीधे लगा जा कर के उस सिक्के पर, पूरी मटका फूट गई, नीचे गिर पड़ा धम से और आटा सब धूल में मिल गया। एक भी मनोकामना पूरा नहीं हुआ, हुआ तो उसी वक्त पूरा हो गया। आटा स्टेशन पे बेच लिया, धन भी कमा लिया, बिजनेस भी कर लिया, मकान भी बना लिया, शादी करके बच्चे को पैदा करके डालमिया में पढ़ा भी लिया, लात भी मार दी महाराज। तो कहते महाराज, बिना भगवान के सुमिरन किए, बिना भगवान के भक्ति किए, ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि बिना भक्ति करके कोई व्यक्ति सुखी हो जाए और अपने काम को सुचारू रूप से चला ले। अगर आप सब अपने जीवन में आनंद चाहते हो, आनंद चाहती है माताएं, आनंद चाहते हैं प्रभु जी लोग, खैर यहाँ तो सब भगत, हम आपके लिए शिक्षा नहीं देते, अपने लिए ही क्या है। आनंद अगर कोई चाहता है, कोई सुख चाहता है, कोई भगवत धाम प्राप्ति करना चाहता है, कोई इस भवरोग से छुटना चाहता है, तो उसी एक उपाय कान खेल खोल के सुनिए, गोविंद के विषय में श्रवण कीजिए, भगवान के सुमिरन कीजिए और जितना हो सके भगवान के नाम उच्चारण कीजिए, क्योंकि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, निरपराध नाम लैले हय सर्व जगत दिशा। अरे महाराज, बाली रावण इतना बलवान था, वैसे रावण को बाली ने अपने कांख के नीचे दबा के रखा था 6 महीने तक, सब रामायण पढ़ते हैं। 6 महीने के बाद जब खुजली मची तो खुजला और बाली नीचे टपका, अरे बाली तू यहाँ पर, 6 महीने के बाद पता चला। अरे रावण कहे कि मैं बड़ा, अगर रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के कांख में क्यों दबा, अगर बाली कहे मैं बड़ा तो राम के हाथ क्यों मरा, राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा, और भक्त कहे मैं बड़ा तो नाम के पीछे क्यों पड़ा। इसलिए अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग महाराज एक ही सरल उपाय है, स्पष्ट, अगर इस दुनिया में जो भवरोग लगी हुई है, जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र में आज हम सब फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के तनाव ग्रस्त है, दुखी है, पुत्र पत्नी घर धन संपत्ति इत्यादि से, कोई अगर किसी को दुख नहीं देता तो आदि आध्यात्मिक क्लेश अपने मन के अंदर परेशान है। इस तनाव से अगर कोई मुक्त होना चाहता है तो एक उपाय है, हमारे गिरधारी के चरणों में शरणागत हो जाए। मनस देह गेह जो किछु मोर, और अपिल तुआ पदे हे गिरधारी नंद किशोर, तेरे चरणों में मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया, सब कुछ गोविंद के चरणों में समर्पण कर दो। अगर इतना जो व्यक्ति कर देता है, जो भी कर लेती है, ठाकुर जी उसको पूरी निर्भय कर देते हैं और देह त्यागने के बाद उसकी इस भवरोग बिल्कुल मुक्त हो जाता है, यही रहते रहते उसकी रोग खत्म हो जाती है। इस दुनिया में भव सागर में रहते हुए भवरोग उसे छू नहीं सकता, कैसे नहीं छू सकता, भगवत गीता के 3rd अध्याय में भगवान कहते, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जो गोविंद के सुमिरन करता है, जो ठाकुर के स्मरण करता है, जो घरों में लाला को रख करके पूजती है पूजता है, जो भगवान गिरधारी दर्शन करने पधारता है, जो गोविंद का भक्ति करता है, नाम जप करता है, वो व्यक्ति को कभी भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता। ये गीता की वाणी है, भगवत गीता की वाणी है, उसे पाप छू नहीं सकता। कैसे छू नहीं सकता, ठाकुर जी कहते अरे वो इस संसार में है, परंतु ये संसार अगर कीचड़ है, ये भवसागर अगर बड़ा सा समुद्र है और इस किस के दलदल में वो व्यक्ति पड़ा हुआ है, उस समुद्र में कई प्रकार के फूल फूटते हैं खिलते हैं, परंतु ये तो कमल है, ऐसे वैसे फूल नहीं है, ये तो कमल है। कमल के पुष्प आप सब देखे होंगे, कमल के पुष्प किस में फैलती है, किस में खिलता है, कमल जब किस में खिलता है मैया, तो किस को स्पर्श नहीं करता है। कीचड़ में कमल खिलता है, परंतु कीचड़ से अस्पृश्य रहता है, कीचड़ उसे कोई प्रभावित नहीं करता, कीचड़ से वो किसी भी पक्ष से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका यह स्वरूप है, गोविंद की विशेष कृपा है। तो जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलते हुए कीचड़ से अप्रभावित रहता है, ठीक उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति हमारे गिरिधारी के शरणागत है, कोई व्यक्ति जगन्नाथ को आप अपने आप को समर्पण कर दिया है, प्रहलाद जैसा कह दिया प्रभु सर्वस्व तेरा है, ध्रुव जैसा कह दिया कातन वितिन वन पिदिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थ अर्ष्मि वरम न याचे, प्रभु आप मुझे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वे। कोई अगर ये दिल से आप में से कह दिया गिरधारी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए रे, अगर मैं तेरे पे आया तो बस मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कितने बार जन्म देना कोई परवाह नहीं है, कहीं भी जन्म देना कोई परवाह नहीं है, परंतु तू मेरे मन से मत जाना, यथा तथा विदिधा तुलम पटो मत प्राणनाथ तु सैव ना पर, तू ही मेरे प्राणनाथ है, लंपट तू कुछ भी कर, दर्शन न देकर एक मरमाहत क्यों न कर, अरे तुम तो कुछ भी करने में सर्वसमर्थ हो, क्योंकि तुम गोविंद हो, नारायण हो, हम तो नर है, हम तो तुम्हारे संतान है, तुम परम पिता हो, हम तुम्हारे पुत्र है, तुम्हारे पुत्रियां है, इसलिए गोविंद कुछ भी कर मेरे को कोई दुख नहीं है, परंतु बस तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर बने रहे। बड़े सुंदर वैष्णव भजन है, राधे तेरे चरणों की गरधूर यदि मिल जाए, सत्य कहता हूं बस तकदीर जो बदल जाए, हे किशोरी यदि तेरी चरण की रज हमें प्राप्त हो गई, हे किशोरी हे गिरधारी तुम्हारे चरण का आशीर्वाद छत्र छाया यदि हमें मिल गया, तो कौन कहता है इस दुनिया में हमारे कुछ बिगड़ जाएगा, सत्य कहता हूँ तकदीर बदल जाए। भगत कहता है अरे मेरा जीवन ऐसे पर्दे की तरह पलट जाती है, मेरे जीवन में क्या नहीं हो जाता गोविंद, वास्तव में ये बात सत्य है, जिसके जीवन में ठाकुर जी है, जिसने भगवान को निमंत्रण दिया है, उसके पास सब कुछ है, मैया ये बात कभी मत सोचना, अरे गोविंद गोविंद ये क्या करते बाबा लोग, बिजनेस व्यापार में भी जोरदार ध्यान देना आवश्यक है, गोविंद का एक दिन सुमिरन नहीं करने से चलेगा, व्यापार में रोज होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, कौन कहा, अगर सच में आपके हृदय में गोविंद के प्रति पूर्ण भरोसा है तो सब कुछ छोड़ के बैठी है, तो देखो गोविंद आपको देता कि नहीं, इस भावना से मत जाइए कि मैं परीक्षा करना चाहता हूं गोविंद देता कि नहीं, ध्रुव की तरह चले जाओ देखो गोविंद ने दिया कि नहीं, तो इसीलिए सभी लोग भगवान के सुमिरन कीजिए, भगवान के नाम जप कीजिए, अपने अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा कीजिए, और राधा गिरधारी जी को अपने दर्शन देने के लिए आई है, गिरधारी के दर्शन आप करो ना करो महाराज, गिरधारी आप सबको देख लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम सब क्या ठाकुर को देखेंगे, ठाकुर को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, अरे भगवान कहते मेरे सामने तू हाजिरी हो जा बेटा, मैं तुझे देख लेता हूँ, मेरी दृष्टि पड़ते ही तू पवित्र हो जाएगा, मेरी दृष्टि पड़ते ही तेरे सर्वांग अमरत्व प्राप्त हो जाएगा तुझे, मेरी दृष्टि पड़ते ही। बांके बिहारी मंदिर में हरिदास सूरदास जी रोज आया करते थे दर्शन करने, जिन्होंने भजन लिखा मैंने ही माखन खायो, जिसने ये भजन लिखा है वैसे सूरदास ने जो अंधे थे, जन्मजात अंधे थे, बिहारी जी के दर्शन करने आते थे, कुछ लड़के उनकी खिली उड़ाते थे, सत्य घटना वृंदावन की, जब लड़के खिली उड़ाते थे तो एक दिन लड़कों ने सूरदास जी को रास्ते में अटका के पूछे, बिहारी के दर्शन करके आ रहे थे, पूछे कि सूरदास जी अरे तुम तो अंधे हो बाबा, तुम बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो तो तुम कैसे देखते हो, तो सूरदास हंसने लगे, बेटा मैं तो अंधा हूँ, मेरा तो आंखें नहीं है, तुम्हारे तो आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो, क्योंकि तुम्हारे आंखें होते हुए भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, अरे गिरधारी अरे बिहारी को हम क्या देखेंगे, बिहारी के सामने मैं इसीलिए जाता हूँ, सूरदास इसीलिए जाता है, सूरदास अंधा है परंतु बिहारी तो अंधे नहीं, बिहारी तो देख लेते मेरे दास मेरे सामने प्रकट हो गया, अरे मेरे भगत मुझे दर्शन देने आया। सत कहता हूँ सब लोग कान खोल के सुनो, आज इतने लोगों को देख करके गिरधारी बहुत खुश हुए होंगे, इतने भक्तों को जब देखते तो गिरधारी खुश हो जाते, क्योंकि भगत भगवान के प्राण है, भगत भगवान के हृदय है। जब दुर्वासा ने अम्बरीश के ऊपर प्रहार किया तो हम दुर्वासा जी भागते भागते वैकुंठपति के चरणों में गिरे और कहने लगे त्राहि वैकुंठपति। तो भगवान ने क्या कहा विष्णु ने, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। भगत तो मेरा प्राण होते है, अरे दुर्वासा जहाँ तक क्षमा की बातें हैं तूने तो मेरे बार रेत पर बार कर लिया, तूने तो मेरे कलीजा काट लिया, तूने तो अमृत जैसे परम भगत मेरे हृदय को ने काट लिया, तो दूसरा हृदय लगाऊंगा तभी तो तुझे कृपा करूंगा, इसीलिए मैं तुझे कृपा नहीं कर सकता। भगत तो सब मेरा प्राण होते, और भगत कौन है महाराज, जो एक बार दारमुख देख एक बार कृष्ण नाम तेई तो वैष्णव तारे करह सम्मान। ये गौरंग महाप्रभु की वाणी है, एक बार कृष्ण कहो हरि कहो राधा कहो गोविंद कहो राघवेंद्र कहो, एक बार कहते ही गोविंद कहते ही मेरा भगत है। वाह क्या दयालु है भगवान, भगवान अपने आप को निर्धावर कर देते हैं। तो इसीलिए सब लोग बड़े प्रेम से लगन के साथ भगवान की भक्ति में जुड़े रहिए और नित्य इस प्रकार आते रहिए, केवल संडे को नहीं है। खैर मैया लोगों का इतना काम नहीं होता, ये लोग मंदिर ज्यादा आ सकते, प्रभु जी लोग भी सवेरे अगर बिस्तर से निकलेंगे तो आ जाएंगे ये लगता है, क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे संडे को सोना है हम बिस्तर बस नहीं, हम शाम को आएंगे बाद में आएंगे या नहीं आएंगे कभी आएंगे देखेंगे, ऐसा मत सोचिए। मौका है, शाम से मनुष्य देह का दुरुपयोग मत कीजिए। जब समय मिला फिल्म मत जाइए, जब समय मिला गार्डन की ठंडी हवा मत लीजिए, बाद में गर्मी गर्मी तेल में पकोड़े की तरह तले जाओगे, ठंडी हवा से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए आकर के यही गिरिधारी के प्रांगण में माथा पच्ची करो, यही गिरिधारी के विषय में सुमिरन करो, उन्हीं का नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा सबकी। सभी लोग साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। वाणी को विनाम करते हैं, अगर हमारे बोली में कोई भूल चूक हो गई होगी तो आप लोग दयालु है, वैष्णव बड़े करुणावान।